नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है। एक आग संसार की आशा भरी नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। संसार की आशा नजरे हमी पर है, उद्धार का संदेश भी कांधों के ऊपर है। एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, भटके से मिलाना है। एक आग हर दिल में। इतने सरल कल ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें हासिल नहीं होंगे। इतने सरल ये रास्ते कल ना हासिल नहीं होंगे। तैयार रहना कल हमें खुद को मिटाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको नमस्कार। हमेशा की तरह आज भी मैं यह आशा रखता हूँ कि आप सब ठीक से हैं और परमेश्वर के जीवित वचन से सीखने के लिए तैयार हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में देखा था कि यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर प्रकट किया कि वह यूसुफ है, और यह खबर फिरौन को भी मिला कि उसके भाई आए हैं, जिसे जानकर वह भी आनंदित हुआ। आज हम उससे आगे के अध्ययन को आरंभ करेंगे। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक 45 अध्याय उसके 17 से 19 पदों को पढ़ें, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कह कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ और मैं तुझे मिस्र देश की सबसे अच्छी भूमि दूंगा और तुम देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। अब तुम्हारे लिए यह आज्ञा है कि मिस्र देश से अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। मित्रों, यहां पर ध्यान दीजिए कि फिरौन चौपहिया गाड़ी भेजने की आज्ञा देता है। कनान के लोग उस समय तक चौपहिया गाड़ी का उपयोग नहीं कर रहे थे, लेकिन मिस्र देश काफी प्रगति पर था। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 45 अध्याय और उसके 20 पद में पढ़ते हैं, और अपने सामान की चिंता मत करना, क्योंकि मिस्र देश की अच्छी से अच्छी भूमि तुम्हारी है। यहां पर कहने का तात्पर्य है कि आपको वहां से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, हम यहां पर सब कुछ उपलब्ध करा देंगे। तब हम आगे उत्पत्ति 45 उसके 21 से 26 पदों में इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब इसराइल के पुत्रों ने ऐसा ही किया और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियां दी और यात्रा के लिए भोजन सामग्री दी। उनमें से हर एक को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र दिया, परंतु बिन्यामीन को उसने चांदी की 300 टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए, और अपने पिता के पास उसने यह भेजा, अर्थात मिस्र की सबसे अच्छी वस्तुओं से लदे 10 गधे और अन्न तथा रोटी और अपने पिता के मार के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। इस प्रकार उसने अपने भाइयों को विदा किया, और जब वे जाने लगे तो उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। तब वे मिस्र से चलकर कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचे, और उन्होंने उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सचमुच वही संपूर्ण मिस्र देश पर प्रभुता करता है, परंतु वह स्तब्ध रह गया क्योंकि उसने उनकी बात पर विश्वास न किया। मित्रों, वह विश्वास ही नहीं कर सका कि यह सच बात है। हम उत्पत्ति 45 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, जब उन्होंने अपने पिता से यूसुफ की वे सब बातें बताई जो उसने उनसे कही थी, तब जब उसने उन गाड़ियों को देखा जिन्हें यूसुफ ने उसके लिए ले आने के लिए भेजी थी, तब उनके पिता याकूब को चैन मिला। अंततः बूढ़ा याकूब इस बात को मान गया और उसने अपनी खुशी व उत्साह को दिखाया। तब हम आगे उत्पत्ति 45 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, तब इसराइल ने कहा, यही बहुत है, मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसे देखूंगा। मित्रों, यहां पर हम क्या ही रोमांचित करने वाले विकास को देख सकते हैं। यूसुफ के उस परिदृश्य को देखकर याकूब को यह निर्णय लेना पड़ा कि वह मिस्र देश में जाए। क्या आप सोचते हैं कि उसने मिस्र में रहने का विचार किया होगा? मैं नहीं सोचता कि उसने ऐसा सोचा होगा। मैं सोचता हूं कि उसने सोचा होगा कि जल्द से जल्द जाकर बेटे से मिले और जैसे ही अकाल खत्म होगा वापस अपने देश कनान में लौट आए, परंतु वह कनान में फिर से नहीं लौट पाया। सिर्फ उसकी अस्थियां वहां पर दफनाने के लिए लाई गई। वह मिस्र देश में ही मर गया। यद्यपि उसका पूरा परिवार वहां रहा, लेकिन उसे कनान देश में दफनाया गया। मित्रों, यहां पर अध्याय 45 समाप्त होता है, लेकिन हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 46 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। संभवतः याकूब ने सोचा होगा कि वह कुछ वर्षों के लिए मिस्र देश जा रहा है, और वह भी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। परमेश्वर ने इब्राहिम को निर्देश दिया था कि मिस्र से बाहर ही रहे, और इब्राहिम मिस्र में गया तो मुसीबत में फंसा, और परमेश्वर ने यही बात इसहाक से भी कही थी। तो अब प्रश्न है कि क्या याकूब को मिस्र देश में जाना चाहिए? उसे अभी और थोड़े उत्साह की जरूरत है। यूसुफ और फिरौन के निमंत्रण से भी बढ़कर उसे परमेश्वर की ओर से अनुमति की आवश्यकता थी। आगे हम देखते हैं कि याकूब और उसका परिवार मिस्र को जाता है। हम उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 1 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार इसराइल अपना सब कुछ लेकर चल पड़ा, और बेसेरबा में आकर उसने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाए। यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात है कि वह अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। उसने पहली बार अपने पिता के घर को हारान जाने के लिए छोड़ा था, तब वह बेतेल में आया था। क्या वह परमेश्वर को देख रहा था? जी नहीं, उसने सोचा वह परमेश्वर से दूर भाग गया है। वह परमेश्वर की इच्छा की खोज में बिल्कुल नहीं था और न ही वह उसकी अगुवाई की मांग कर रहा था। यहां पर क्या ही विरोधाभास है। जवान याकूब और परमेश्वर के दास इब्राहिम के बीच में है। परमेश्वर के दास इब्राहिम ने परमेश्वर से बिना अनुमति पाए या उसकी ओर बिना देखे कोई भी कदम नहीं बढ़ाया, परंतु याकूब ने कभी नहीं सोचा कि उसके जीवन में भी परमेश्वर की आवश्यकता है। और इसे सीखने व समझने में उसे एक लंबा समय लगा कि वह जीवन जो वह जी रहा है वह सही नहीं है। मित्रों, आज बहुत से मसीही लोग हैं जो पूरे हफ्ते परमेश्वर को अपने कार्यक्रम से अलग रखते हैं। वे अपना निर्णय स्वयं लेते हैं और जो करना चाहते हैं वही करते हैं। तब वे रविवार की आराधना में आते हैं और बहुत धार्मिक होते हैं और वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। वे ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का मतलब रविवार को आराधनालय में जाना है और हो सके तो संडे स्कूल को पढ़ाना है, और तब रविवार की रात को वे परमेश्वर को शुभ विदाई या बाय बाय कहते हैं और बाकी पूरे हफ्ते में उनके लिए परमेश्वर के सामने आने का कोई समय नहीं होता है। यह व्यक्ति याकूब अपने अधिकतर जीवन में परमेश्वर की खोज में नहीं रहा, परंतु अब जब वह बेर्शेबा में पहुंचता है तो वह अपने पिता के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। अब परमेश्वर उसके प्रति उदार होने जा रहे हैं और उसे दर्शन देते हैं। हम उत्पत्ति 46 अध्याय के 2 और 3 पद में पढ़ते हैं, तब परमेश्वर ने इसराइल से रात्रि में दर्शनों के द्वारा बातें की और कहा, याकूब, हे याकूब, और उसने कहा, मैं यहां हूं। उसने कहा, मैं परमेश्वर हूं, तेरे पिता का परमेश्वर, मिस्र में जाने से भयभीत न हो, क्योंकि वहां मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा। मित्रों, अब परमेश्वर याकूब से वायदा कर रहे हैं कि वह याकूब को मिस्र में एक बड़ी जाति बनाएंगे। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि परमेश्वर ने ऐसा किया ही नहीं। हम इसके उत्तर को बाइबल के अगले पुस्तक में पाते हैं, निर्गमन 1 अध्याय उसके 7 पद पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु इसराइल के वंशज फूलते फलते और संख्या में अधिक बढ़ते गए और फैलकर अति सामर्थी हो गए, जिससे समस्त देश उनसे भर गया। मित्रों, वास्तव में इसराइल की जनसंख्या काफी बढ़ गई। इसका स्पष्टीकरण क्या है? परमेश्वर अपने वायदा को सही बना रहे हैं। मैं तुम्हारे पिता का परमेश्वर हूं, डर मत और मिस्र देश को चला जा, मैं वहां पर तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। और जो वायदा परमेश्वर ने उससे किया था उसे उसने पूरा भी किया। हम उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं तेरे साथ साथ मिस्र को जाऊंगा और मैं फिर तुझे निश्चय ही लौटा ले आऊंगा, और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखें बंद करेगा। तब याकूब बेर्शेबा से चला और इसराइल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बच्चों और अपनी पत्नियों को उन गाड़ियों पर चढ़ाकर चल पड़े जो फिरौन ने उसके लाने के लिए भेजी थी। मित्रों, आप इस बात को याद करें कि फिरौन ने उनके लिए मिस्र से चौपहिया भेजा था। वे याकूब को एक बड़ी गाड़ी में बैठाते हैं और वे चल पड़ते हैं। मित्रों, याकूब के जीवन को 3 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, पहला हरान की भूमि में, दूसरा कनान की भूमि में और तीसरा मिस्र की भूमि में। ये सिर्फ 3 भौगोलिक क्षेत्र ही नहीं है, परंतु ये 3 आत्मिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। याकूब ने जब उस भूमि को छोड़ा तो उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। जब वह हारान में आया तो वह परमेश्वर का जन था जो सांसारिक जीवन जी रहा था, और वह हारान से भागकर निकला। वह अपने ससुर से दूर भाग रहा था और अपने भाई एसाव से मिलने के लिए डर रहा था। और तब कनान में याकूब कुश्ती लड़ा। वह परमेश्वर का जन है, परंतु अपनी ही ताकत से वह लड़ रहा था और वह मिस्र देश को जा रहा था। अब वह अपनी शक्ति से नहीं चल रहा है और न ही वह कहीं भाग रहा है, अब वह विश्वास के द्वारा चल रहा है। मित्रों, यद्यपि उत्पत्ति की पुस्तक के इस भाग में यीशु प्रचलित है, परंतु विश्वासी व्यक्ति के उन घटनाओं को चिन्हित करना ना भूलें जो याकूब के जीवन से हैं। याकूब वही व्यक्ति बना जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता था, और सिर्फ परमेश्वर ही ऐसे व्यक्तियों को बना सकता है या सुधार सकता है। तो आइए मैं आपको पुनः बता दूं कि याकूब का जीवन हारान में यह दर्शाता है कि परमेश्वर का जन सांसारिक जीवन जी रहा है और कनान में परमेश्वर का जन अपनी शक्ति से लड़ रहा है, और याकूब का जीवन मिस्र में दर्शाता है कि परमेश्वर का जन विश्वास के द्वारा चल रहा है। मैं यह विश्वास करता हूं कि आज हम में से कई लोगों के साथ यही सही है। एक समय था जब हमने सुसमाचार को सुना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, अर्थात हम उसकी ओर फिरे। और तब एक समय ऐसा भी आया और हमने सोचा कि हम अपने बल पर जीवन जी सकते हैं। शायद यह साल भर तक चलता रहा। तब वह समय भी आया कि हम अनुग्रह और ज्ञान में आगे बढ़ें और हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में भी और विश्वास के द्वारा चलना आरंभ कर दिए। हम उत्पत्ति 46 के 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, और वे अपने पशुधन और कनान में इकट्ठा की गई अपनी सारी धन संपत्ति को लेकर मिस्र में आए। याकूब और उसके सब वंशज साथ थे, उसके साथ उसके पुत्र और उसके पोते, पुत्रियां और पोतियां थी। वह अपनी संतानों को अपने साथ मिस्र में ले आया। मित्रों, अकाल के कारण याकूब को अपने सब लोगों को, बच्चों और नाती पोतियों को भी मिस्र में ले जाना पड़ा। उसके सभी पशुओं को भी जाना पड़ा, क्योंकि अकाल के कारण वे वहां जीवित नहीं रह सकते थे। हम अगले पद में याकूब की वंशावली को पाते हैं। यह वंशावली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वंशावली जो यीशु मसीह की ओर ले जाएगी, और बाद में पूरी बाइबल में इसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। याकूब के सभी पुत्रों के नाम लिखे जाने के बाद में हम इसे पढ़ते हैं, उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, याकूब ने निज वंश के सब प्राणी जो मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़ कुल मिलाकर 66 थे। मित्रों, याकूब से कुल 66 लोग थे जो उसके साथ कनान से मिस्र में आए। यूसुफ और उसका परिवार तो पहले से ही वहां पर था। अब हम उत्पत्ति 46 उसके 27 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे दो प्राणी थे। याकूब के घराने के जितने प्राणी मिस्र में आए, वे कुल मिलाकर 70 थे। मित्रों, इन्हें मिलाकर याकूब का पूरा घराना 70 हो गया। इस बात को ध्यान में रखें कि याकूब के पुत्र और उसके संतानों के नाम के द्वारा से सूची बने हैं। क्यों ये नाम की सूची हमें बाइबल में दी गई है? क्या परमेश्वर के पास और कोई महत्वपूर्ण सूचना हमें देने के लिए नहीं थी? मेरे प्रिय मित्र, हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी सूचना महत्वपूर्ण नहीं है, और यही वंशावली जो हमें उसकी ओर ले चलती है। हम मत्ती रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में इनमें से कुछ नामों को पाएंगे जो नए नियम की पहली पुस्तक है, और पुनः हम लुका रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में इस वंशावली को पाएंगे। इसी कारण से यह नामों की सूची बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका और भी एक कारण है, और यह बहुत ही व्यक्तिगत है। क्या आपने कभी मेमने के जीवन की पुस्तक का नाम सुना है? प्रश्न यह है कि क्या आपका नाम वहां पर लिखा हुआ है? जिस प्रकार जन्म से ही आते हैं, परंतु मेमने के जीवन की पुस्तक में आप सिर्फ नए जन्म के द्वारा ही आ सकते हैं, जो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा से होता है। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप यीशु मसीह की संतान बन जाते हैं। मित्रों, मैं आपके विषय में नहीं जानता कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं। संभवतः मैंने आपके बारे में कभी सुना भी नहीं, परंतु परमेश्वर आपको जानता है, यहां तक कि वह आपके सिर के बालों की संख्या को भी जानता है। जो लोग आपको जानते हैं, उनसे भी अधिक अच्छी तरह से वह आपको जानते हैं। वह आपको जानते हैं और आपसे, आपकी माता से भी अधिक प्यार करते हैं। मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि आपकी माता ने कभी आपके सिर के बालों को गिना होगा, परंतु परमेश्वर ने गिना है। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मित्रों, याकूब की वंशावली में जो नाम है वे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं ऐसे ही टेलीविजन में समाचार देख रहा था और मैंने जवानों की एक भीड़ देखी जो कुछ उत्सव मना रहे थे, जो लगभग 200,000 गंदे और अश्लील जवान थे। उन्हें नए रूप में आने के लिए स्नान की आवश्यकता थी, परंतु वहां पर बारिश शुरू हुई और वे कीचड़ में सन गए। जब मैंने उन्हें देखा तो सोचा कि परमेश्वर उनमें से प्रत्येक को जानता है और उनमें से प्रत्येक से प्रेम करता है। वे परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और मसीह सबके लिए मरा। मेरे प्रिय मित्रों, आप इस बढ़ती संख्या के बीच में हैं जो करोड़ों में है, फिर भी आप परमेश्वर के लिए बहुत ही व्यक्तिगत हैं। और याकूब की वंशावली की सूची में जो लोग हैं उन्हें मैं नहीं जानता, स्पष्ट रूप से कहूं तो मैं उसमें रुचि नहीं रखता, परंतु परमेश्वर रखता है। उसे उन लोगों के नामों को सूची में रखने से आनंद हो रहा था, क्योंकि वे सब उसके ही लोग थे। यह मुझे एक प्रश्न आपसे पूछने को विवश करता है कि क्या आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? अब हम देखते हैं कि याकूब अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र में आता है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 46 अध्याय उसके 28 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। अब हम आगे देखते हैं कि याकूब और यूसुफ का पुनर्मिलन होता है, और क्या ही अद्भुत दृश्य यहां हमारे सामने है। मित्रों, हम उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 29 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब यूसुफ अपना रथ जुतवा कर अपने पिता इसराइल से भेंट करने को गोशेन देश में गया, और जैसे ही वह निकट पहुंचा वह उसके गले से लिपट गया और उसके गले से लिपट के बहुत देर तक रोया। मित्रों, वह अपने पिता के गले से लिपट गया और रोया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह अच्छा समय था। मैं नहीं जानता कि यह अच्छा समय कब तक है, परंतु यह एक मायने रखता है कि यह केवल हाथ मिलाना ही नहीं था, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। यहां पर उनकी भावना वास्तविक थी, इसलिए यह क्या ही अद्भुत मिलन था। हम उत्पत्ति 46 अध्याय उसके 30 पद में पढ़ते हैं, तब इसराइल ने यूसुफ से कहा, अब चाहे मैं मर जाऊं, क्योंकि अब तो मैंने तेरा मुख देख लिया है कि तू अभी तक जीवित है। मित्रों, मैं सोचता हूं कि बूढ़ा याकूब जो मरने पर था, उसके लिए यह क्या ही आनंद की बात रही होगी। मैं विश्वास करता हूं कि उसने यह यात्रा बड़ी कठिनाई से की, परंतु परमेश्वर ने उसे स्थिर किया। अब हम आगे पाएंगे कि उसे मिस्र देश में कुछ वर्ष रहने की अनुमति दी गई। यूसुफ और इसराइल के ये कुछ वर्ष एक साथ में आखिरी वर्ष थे। यहां पर ध्यान दीजिए कि याकूब अब परमेश्वर का पुत्र है जो विश्वास के द्वारा चलता है, इसलिए वह इसराइल के नाम से पुकारा गया है। यहां पर ध्यान दीजिए कि यहां पर याकूब को इसराइल कहा गया है। हम उत्पत्ति की पुस्तक 46 अध्याय उसके 31 से 34 पदों में पढ़ते हैं, लिखा है, यूसुफ ने अपने भाइयों और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को बताऊंगा और उससे कहूंगा, मेरे भाई और मेरे पिता का घराना जो कनान देश में था मेरे पास आ गए हैं, और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे तो पशुओं को पालते हैं, और वे अपनी भेड़ बकरियां तथा गाय बैल और जो कुछ उनका था सब ले आए हैं। और जब फिरौन तुम्हें बुलाकर पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तो तुम यह कहना, तेरे सेवक लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, हम और हमारे पुरखा भी यही काम करते आए हैं, जिससे कि तुम गोशेन देश में रहने पाओ, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्रियों को घृणा है। मित्रों, आज संयुक्त राज्य के पश्चिमी भाग में जो समस्या है, वह समस्या उन दिनों मिस्र में थी। एक मित्र ने मुझे बताया कि जब उसका एक मित्र पश्चिमी टेक्सास में रहता था और वह लड़का ही था, तब यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में भेड़ पालने की कोशिश करता तो वह निश्चय ही समस्या में पड़ता था। उसने पाया कि उसका कोई भी मित्र नहीं है और वह एक बड़ी मुसीबत में पड़ गया। उसी प्रकार से मिस्री लोग भी चरवाहों की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। मित्रों, यह एक मजेदार बात है कि पवित्र शास्त्र अर्थात परमेश्वर के वचन में चरवाहों के बारे में बहुत कुछ कहने के लिए है। ये लोग चरवाहे थे जो अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करते थे, और वे आज भी इसराइल देश में ऐसा ही करते हैं। मित्रों, यहां पर चरवाहा शब्द यीशु मसीह को दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है। वह एक अच्छा चरवाहा है जो अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वह एक महान चरवाहा है जो अपने भेड़ों की देखभाल आज भी करता है। वह एक प्रमुख चरवाहा है जिसका प्रकट होना अभी बाकी ही है, जो अपने आप को चरवाहा कहता है। और मेरे मित्रों, वह संसार के लिए घृणित है। आज उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। मैं वास्तविक और सच्चे यीशु मसीह के बारे में बातें कर रहा हूं। उदारवाद ने ऐसे यीशु मसीह को दुनिया के सामने रखा है जिसे दुनिया स्वीकार करे। उन्होंने यीशु मसीह की एक तस्वीर बनाई है जो बाइबल के यीशु मसीह से मेल नहीं खाती है। वे जिसके बारे में बातें करते हैं वह कभी कुंवारी से पैदा नहीं हुआ और न ही कोई आश्चर्य कर्म या चमत्कार किए। वह संसार के पापियों के लिए नहीं मरा और न ही वह शारीरिक रीति से पुनः जीवित हुआ। उदारवादियों का यीशु मृतकों में से कभी जीवित नहीं हुआ। उनका कहना है कि यीशु मसीह का कोई भी ऐसा रिकॉर्ड या लेख या संग्रह नहीं है। लेकिन हमारे पास जो लेख या रिकॉर्ड है जिसमें कुंवारी से जन्मा, आश्चर्य कर्म किए, संसार के पापियों के लिए मरा और शरीर के रूप में वह कब्र में से जी उठा, यही वह चरवाहा है जिसे संसार पसंद नहीं करता है। वह आज भी संसार के लिए घृणित बना हुआ है। मित्रों, चरवाहे मिस्रियों के लिए घृणित होते थे, अर्थात वे उनसे घृणा करते थे। यूसुफ अपने भाइयों से कहता है कि वे फिरौन से कहे कि वे चरवाहे हैं और वे भेड़ बकरियों की देखभाल करते हैं। वास्तव में उनके पास जानवर और भेड़ बकरी दोनों थे। हम बाद में देखेंगे कि फिरौन उन्हें गोशेन में रहने के लिए जगह देता है और अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल करने को कहता है, और इस प्रकार से इसराइल के पुत्र मिस्र देश में चरवाहे बने। मित्रों, वास्तव में अब यहाँ एक अद्भुत बात देखने को मिलती है कि याकूब का पूरा परिवार गोशेन में रह रहा है। यही स्थान उन लोगों के लिए एक लंबे समय तक घर व रहने का स्थान बनने जा रहा है। परंतु यूसुफ की मृत्यु के बाद वे मिस्र देश में गुलाम या दास बनने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके साथ साथ सब समय रहेंगे और वे वहां पर एक बड़ी जाति बनकर उभरेंगे। तब मूसा की अगुवाई में वह उन्हें वहां से बाहर निकाल ले जाएगा। मित्रों, हमें कहीं भी ऐसे पढ़ने के लिए नहीं मिलता है कि परमेश्वर ने यूसुफ को दर्शन दिया। फिर भी हम परमेश्वर का पूर्व प्रबंध यूसुफ के जीवन में निश्चित रूप से देखते हैं। यह बिल्कुल सच है कि उसे पहले से ही यहां आना था ताकि वह इसराइल के पूरे परिवार के लिए मिस्र में भोजन का प्रबंध करे और पूरा परिवार जीवित रह सके। मित्रों, यहां पर हमारा समय समाप्त होता है, इसलिए अब हम अपने इस अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले अध्ययन में हम इसके आगे के भागों पर विचार करेंगे। तब तक आप सब प्रभु की संगति में बने रहें। प्रभु आप सबको अपनी आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें: कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए: कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।